एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जो सच में पाठक को अंदर तक हिला देता है। एक ऐसा उपन्यास जो आसानी से किसी खांचे में फिट नहीं होता।
हाँ, हम बात कर रहे हैं हंगेरियन लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता इमरे कर्तेस के उपन्यास नियतिहीनता की। मूल शीर्षक है सोर्स्टालिनसांग।
बिल्कुल, और इमरे कर्तेस का खुद का जीवन वो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है ना? 1929 में जन्म, होलोकॉस्ट सर्वाइवर।
जी हाँ, किशोरावस्था में ही उन्होंने ऑशविट्स और बुखेनवाल्ड की भयावहता को झेला था, और फिर युद्ध के बाद कम्युनिस्ट हंगरी में वापसी, सालों की गुमनामी। उनका पूरा लेखन 20वीं सदी के इतिहास के जख्मों से जुड़ा हुआ लगता है।
सही कहा, और ये उपन्यास 1975 में प्रकाशित हुआ, तो जाहिर है उस दौर की छाप इस पर है। द्वितीय विश्व युद्ध की यादें, वो यहूदी विरोधी माहौल, फिर कम्युनिस्ट शासन का दबाव।
हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नियतिहीनता उस तरह का हॉलोकास्ट साहित्य नहीं है जैसा हम आम तौर पर पढ़ते हैं। इसमें न तो कोई वीरता का गुणगान है, न ही पीड़ितों का कोई भावुक चित्रण।
बिल्कुल नहीं, करते इसका नजरिया एकदम अलग है।
ये कहानी एक 14 साल के लड़के ग्योर्गी ग्यूरीकोविश की आंखों से बयान की गई है, और कमाल की बात यह है कि उसकी आवाज में एक अजीब सी तटस्थता है।
तटस्थता, हाँ, लगभग एक वैज्ञानिक जिज्ञासा जैसी, जैसे वो यातना शिविरों को कोई नर्क न समझकर एक नई जटिल व्यवस्था समझ रहा हो।
बिल्कुल, जिसके नियम उसे सीखने हैं ताकि वो वहां टिक सके।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस अनोखे नजरिए को, इस उपन्यास की गहराई को समझें। हम कहानी पर बात करेंगे, ग्यूरी के चरित्र की यात्रा, मुख्य विषय, और कर्तेस की वो खास शैली, वो भावशून्य सी लगने वाली शैली जिसने इसे विश्व साहित्य की एक अहम कृति बनाया।
तो शुरुआत होती है 1944 के बुडापेस्ट से।
हाँ, उस वक्त माहौल कैसा था ग्योरी के लिए?
हाँ, यहूदी विरोधी कानून है, जीवन मुश्किल हो रहा है, पिता को भी लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी रोजमर्रा की एक लय बनी हुई है। ग्यूरी कैसे यहूदी परिवार से है जो समाज में घुल मिल गया था। वो थोड़ा अपने में रहने वाला लड़का है, दुनिया को बस देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है।
और पिता की विदाई भी, जैसा आपने कहा, कोई बहुत नाटकीय घटना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीब सी रस्में हैं, कर्तव्य की एक धुंधली सी भावना, बस।
और यहीं से कर्तेस का वो अलग अंदाज दिखता है। होलोकॉस्ट की शुरुआत किसी बड़ी हिंसक घटना से नहीं होती ग्यूरी के लिए।
नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण, लगभग दफ्तरी कार्रवाई जैसी घटना से। वो काम पर जाने के लिए बस पकड़ता है और पुलिस उसे और बाकी यहूदी पुरुषों और लड़कों को नीचे उतार लेती है।
बस यूं ही?
हाँ, जैसे ये रोज का काम हो। कोई चीख पुकार नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक आदेश का पालन।
और यहीं से वो उस मशीनरी में खिंचता चला जाता है।
जी हाँ, वो मशीनरी जिसका अंत ऑशविट्स, बुखेनवाल्ड, ज़िट्स जैसे शिविर हैं। यात्रा शुरू होती है एक ईंट भट्ठे से, जहां उनसे उनका सामान वगैरह छीन लिया जाता है। लेकिन ग्यूरी का ध्यान किस पर है?
किस पर?
व्यावहारिक चीजों पर, कि भाई मेरे वर्क परमिट का क्या होगा, मैं काम से गैर हाजिर कैसे माना जाऊंगा।
ये अविश्वसनीय लगता है ना, पर शायद यही उपन्यास का सार है। कर्तेस का ध्यान बाहरी अत्याचारों से ज्यादा ग्यूरी के आंतरिक अनुभव पर है।
हाँ, वो डर या नैतिक गुस्से से ज्यादा एक अजीब सी तटस्थता, एक तर्कसंगतता से चीजों को देख रहा है।
वो मानो पूछ रहा है, अच्छा तो ये नई जगह है, इसके नियम क्या हैं, यहाँ जिंदा कैसे रहना है।
और यही सवाल उपन्यास के केंद्र में है, कि विनाश के लिए बनाई गई एक व्यवस्था के अंदर कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपना जीवन कैसे बनाता है, और उस पहचान का होता क्या है जब वो वापस उस दुनिया में लौटता है जिसे हम सामान्य कहते हैं।
तो मतलब ग्यूरी सिर्फ एक मूक शिकार नहीं है?
नहीं, कार्तेस उसे ऐसे नहीं दिखाते। वो लगातार अपने हालात को समझने की, उसमें ढलने की कोशिश कर रहा है। वो अपने अस्तित्व में, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों न हो, एक सक्रिय भागीदार है।
उसकी वो तर्कसंगतता ही उसका एक तरह से बचाव का तरीका बन जाती है, भले ही वो हमें थोड़ी परेशान करने वाली लगे।
हाँ, और ये तर्कसंगतता उसके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। जैसे जैसे उसकी बाहरी पहचान छीन ली जाती है, नाम, कपड़े, उसका अतीत, वो भावनात्मक रूप से बिखरने के बजाय क्या करता है?
वो और ज्यादा ध्यान से नियमों का समझने लगता है, जैसे ऑशविट्स पहुंचने पर, जहां वो कुख्यात सिलेक्शन होता है।
हाँ,
वो उसे भी एक तरह की छटाई के तौर पे देखता है। उसका फोकस इस पर है कि सही लाइन में कैसे लगना है, निर्देशों का पालन कैसे करना है, सिर मुंडवाना, वो धारीदार वर्दी, ये सब उसके लिए बस प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं।
वो इन्हें नर्क के हिस्सों की तरह नहीं, बल्कि एक नई सच्चाई, एक नई व्यवस्था के नियमों की तरह देख रहा है। क्रूरता, शिविर के ऊंच नीच का क्रम, बीमारी और मौत का रोजमर्रा का सच, और वो इन सब को शिविर के प्राकृतिक नियम मानकर जैसे स्वीकार कर लेता है।
यहाँ तक कि जब वो बीमार पड़ता है, उसके कूल्हे और पैर में भयानक फोड़े हो जाते हैं और उसे अस्पताल भेजा जाता है।
हाँ, वो भी उसके लिए बस व्यवस्था का एक और हिस्सा है, अस्पताल, जहाँ भयानक तकलीफ तो है लेकिन काम की मजदूरी से एक तरह की राहत भी। बिस्तर पर पड़े पड़े वो शिविर की दुनिया का और बारीकी से जैसे अध्ययन करता है।
और शिविर में दूसरे कैदी भी तो होंगे, जैसे बॉन्डी सिट्रोम। उस पात्र का क्या महत्व है?
बॉन्डी सिट्रोम एक अनुभवी कैदी है, ज्यादा व्यावहारिक, दुनियादार। वो ग्यूरी को शिविर में जीने की छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातें सिखाता है। कैसे अपनी ऊर्जा बचानी है, कैसे यहाँ के अलिखित कायदे कानूनों को समझना है। उनकी दोस्ती भी किसी भावुकता पर नहीं टिकी है, वो बस जिंदा रहने की आपसी जरूरत पर आधारित है। सिट्रोम एक तरह से दिखाता है कि शिविर के माहौल में ढल जाने का मतलब क्या होता है, और उसकी मौत वो भी जीवन की आकस्मिकता को दिखाती है।
और इस कहानी का खलनायक कौन है? कोई खास क्रूर गार्ड, कोई अफसर?
यहां भी कर्तेज लीक से हटकर चलते हैं, कोई एक पारंपरिक विलेन नहीं है।
तो फिर
असली विरोधी है वो पूरा सिस्टम, होलोकॉस्ट की वो अव्यक्तिक नौकरशाही और भयानक रूप से कुशल मशीनरी। एसएस अफसर, कापो, डॉक्टर, ये सब उस सिस्टम के पुर्जे हैं, बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
हाँ, आपने हैना एरेंट की बुराई की सामान्यता, बनालिटी ऑफ ईविल, का जिक्र किया था।
जी, एक जर्मन सैनिक का जिक्र आता है जो ग्यूरी को ट्रेन में भेजने से ठीक पहले बड़े आराम से उसका कॉलर ठीक करता है। क्रूरता किसी व्यक्तिगत नफरत या जुनून से नहीं आ रही, बल्कि एक ठंडे, व्यवस्थित, आत्मा को कुचल देने वाले रूटीन से आ रही है। दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, शिविर का तर्क है।
तो फिर शिविर से मुक्ति जब अमेरिकी सेना आती है, वो कैसा क्षण होता है ग्यूरी के लिए? आजादी का जश्न?
नहीं, कर्तेज यहां फिर चौंकाते हैं। मुक्ति ग्यूरी के लिए, जो उस वक्त अस्पताल में बहुत बीमार है, कोई खुशी का पल नहीं है। ये उसकी जानी पहचानी दुनिया का एक और कंफ्यूजिंग करने वाला बदराव है।
उसे उस व्यवस्था के टूटने का अफसोस होता है।
एक तरह से हाँ, अजीब लग सकता है, पर उसे उस सिस्टम के टूटने का अफसोस सा होता है जिसके नियम वो समझने लगा था। उसे शिविर जीवन की उस निर्मम स्पष्टता के लिए एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया जैसी महसूस होती है।
और फिर बुडापेस्ट वापसी, उसका स्वागत कैसे होता है?
वापसी शायद उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती लेकर आती है। उसका घर, उसमें अब कोई और रह रहा है। पुराने पड़ोसी, दोस्त मिलते हैं, वो सब भयानकताओं के बारे में सुनना चाहते हैं।
हाँ, सुनना चाहते हैं।
लेकिन उनके पास सहानुभूति और कुछ घिसी पिटी बातों के अलावा कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि ग्यूरी सब भूल जाए, एक नई शुरुआत करे।
लेकिन ग्यूरी के लिए ये नामुमकिन है।
क्यों नामुमकिन है?
क्योंकि वो उस दुनिया से जुड़ी नहीं पाता। वो कैफे, वो सामान्य बातचीत, वो नैतिक निश्चितताएं, ये सब उसे बेगाने लगते हैं। वो महसूस करता है कि जो जिंदा बच गए हैं उनकी तुलना में वो अपने मृत साथी कैदियों के ज्यादा करीब है।
उसका अनुभव इतना अलग, इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयान करना या दूसरों को समझा पाना नामुमकिन सा लगता है।
यहीं पर वो असली अलगाव सामने आता है, उत्तरजीवी का अलगाव।
और यहीं से उपन्यास अपने शीर्षक नियतिहीनता के अर्थ तक पहुंचता है।
जी
हाँ,
उपन्यास के अंत में ग्यूरी अपने अनुभव से जो दर्शन गढ़ता है उसे सामने रखता है। वो इस विचार को पूरी तरह खारिज कर देता है कि शिविरों में बिताया गया उसका समय कोई गलती थी या कोई अर्थहीन दुर्घटना।
वो क्या कहता है?
वो कहता है, मैंने एक दिया हुआ भाग्य जिया। ये मेरा भाग्य नहीं था, लेकिन मैंने इसे जिया। मैं नया जीवन शुरू नहीं कर सकता, केवल पुराने को जारी रख सकता हूँ। मैंने एक कदम उठाया और अब मुझे अगला कदम उठाना होगा। ये उसका भावार्थ है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने अनुभव को नकारने के बजाय उसे अपना रहा है पूरी तरह से।
बिल्कुल, वो निष्क्रिय शिकार होने से इनकार करता है। वो कहता है कि हर पल शिविर में भी वो एक चुनाव कर रहा था, अगला कदम उठाने का, एक और सांस लेने का, जिंदा रहने का। और ऐसा करके उसने उस रास्ते को, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों न हो, अपना बना लिया।
यही है नियतिहीनता।
हाँ, नियतिहीनता, भाग्य द्वारा तय न किया जाना, बल्कि अपने जिए गए जीवन को जैसा भी वो था पूरी तरह स्वीकार करना। ये स्वतंत्रता की एक बहुत ही रेडिकल, हमें असहज करने वाली धारणा है।
ये हमें उपन्यास के मुख्य विषयों पर ले आता है। नियतिहीनता बनाम नियति तो है ही, और बुराई की सामान्यता का चित्रण,
हाँ, जिसकी हमने बात की। और तीसरा बड़ा विषय है उत्तरजीवी का अलगाव। शिविर से बच निकलना तो बस आधी लड़ाई है, असली चुनौती है सामान्य दुनिया में लौटना और वहां अपनी जगह ना पा सकना।
ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, बल्कि उस दुख को कह पाने, साझा कर पाने और समझे जाने की जो अक्षमता है, उसकी कहानी भी है।
सीख अमानवीकरण की है, क्रूर यथार्थ की है, और ये सीख उसे सामान्य समाज से हमेशा के लिए काट देती है।
कर्तेज स्वतंत्रता और खुशी जैसी धारणाओं को भी बिल्कुल नए सिरे से परिभाषित करते हैं।
हाँ।
ग्यूरी के लिए स्वतंत्रता बाहरी नहीं, वो एक आंतरिक चीज है, अपने जीवन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता।
और खुशी, वो यातना शिविरों की खुशी की बात करता है। ये कोई आनंद या मजा नहीं, बल्कि अगले पल तक जिंदा बच जाने की वो तीव्र पार्श्विक राहत है। ये हमारी आरामदेह धारणाओं पर सीधी चोट है।
और जिस शैली में कर्तेज ये सब कहते हैं, वो भी उतनी ही खास है, खासकर ग्यूरी की आवाज।
हाँ, वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, लेकिन उसमें गहरा अलगाव है और एक लगभग बचकाना लगने वाली तर्कसंगतता है।
वो भयानक से भयानक घटनाओं का वर्णन भी ऐसे करती है जैसे जैसे मौसम का हाल बता रही हो।
कोई भावनात्मक उबाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई आत्मदया नहीं। जैसे वो एक जगह सोचता है, शिविर में पहुंचकर मुझे पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां अगर गुजारा करना है तो सही ढंग से व्यवहार करना आना चाहिए। भावार्थ, उसकी पहली प्रतिक्रिया हमेशा नियमों को समझने की होती है।
इसे व्यंग्यात्मक अलगाव या आयरोनिक डिटैचमेंट कह सकते हैं शायद। कर्तेज जानबूझकर वो अपेक्षित भावनात्मक प्रतिक्रिया रोक लेते हैं
और उसका बोझ पाठक पर डाल देते हैं। हमें वो महसूस करना पड़ता है, वो भयावहता, वो दया, वो गुस्सा, जिसे यूरी सिर्फ देख रहा है, जिसका विश्लेषण कर रहा है। ये बहुत ताकतवर तकनीक है।
और भाषा भी एकदम सपाट, तथ्यात्मक, संरचना भी सीधी रैखिक, जैसे कोई दिमाग उस चरम अव्यवस्था पर भी एक व्यवस्था थोपने की कोशिश कर रहा हो।
प्रतीक है, पर बहुत सूक्ष्म, जैसे घड़ी जो पीछे छोटे सभ्य समय की प्रतीक है, भोजन जो जीवन का केंद्र बन जाता है, उसकी कमी, उसकी गुणवत्ता, और वो धारीदार वर्दी
जो पहचान छीन लेती है।
हाँ,
ये शैली उस अनुभव को बिल्कुल सटीक पकड़ती है, एक विशाल अव्यक्तिक मशीन का एक छोटा सा महत्वहीन पुर्जा होने का एहसास।
उस उद्धरण पर वापस आते हैं जिसमें वो यातना शिविरों की खुशी की बात करता है। वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, सबसे ज्यादा असहज करने वाला हिस्सा है।
हाँ, वो कहती है वहां भी चिमनी की छाया में एकता की खुशी थी। लोग हमेशा कठिनाइयों और भयानकताओं के बारे में पूछते हैं, जबकि मेरे लिए शायद यह सबसे यादगार अनुभव है।
हाँ, यातना शिविरों की खुशी,
वर्तमान क्षण पर अगले कदम पर एकाग्रता। भावार्थ,
ये उद्धरण हमें सबसे ज्यादा असहज करता है। ये दिखाता है कि चरम स्थितियों में मानवीय अनुभव कितने बदल जाते हैं, कितने अपरिचित हो जाते हैं। ये खुशी हमारे रोजमर्रा के अर्थों वाली खुशी नहीं है, ये बस जिंदा रहने की, अगला सांस लेने की वो पार्श्विक तीव्र अनुभूति है।
और ये ग्यूरी का अपने अनुभव को वैध ठहराने का, उसे दूसरों की भयानक की परिभाषा से आजाद करने का तरीका भी है।
एक और बात जो कर्तेज कहते हैं वो भाषा की सीमाओं के बारे में है, ग्यूरी महसूस करता है।
हाँ, वो कहता है, मैं किसी ऐसे वाक्य, शब्द या संकेत की कल्पना नहीं कर सकता जो किसी तरह से गैस चैम्बरों से संबंधित हो सके।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कुछ अनुभव इतने चरम होते हैं, इतने विध्वंसक होते हैं कि उन्हें भाषा में समेटा ही नहीं जा सकता, उन्हें पूरी तरह से बताना असंभव है।
और ये भी उत्तरजीवी के अलगाव का एक बड़ा कारण है।
तो अगर हम कुल मिलाकर देखें, इस उपन्यास का भावनात्मक प्रभाव कैसा है? अगर ये सीधे तौर पर भावनाओं को नहीं जगाता तो क्या ये पाठक को ठंडा छोड़ देता है?
नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका असर ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। ये सीधी अपील से बचकर एक बेचैनी पैदा करता है। ग्यूरी की वो तटस्थ आवाज वो पाठक को बिना किसी सहारे के उस भयावहता का सामना करने पर मजबूर करती है।
ये हमें अच्छाई, बुराई, भाग्य, स्वतंत्रता, पीड़ित होने और कर्ता होने, इन सब पर हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है।
ये कोई आसान जवाब या सीधा नैतिक सबक नहीं देता। ये अस्तित्व को उसकी पूरी जटिलता में, उसकी नैतिक अस्पष्टता में दिखाता है, और शायद इसीलिए ये इतना असरदार है। ये पाठक को एक अनसुलझे तनाव के साथ छोड़ देता है।
आखिर में ये उत्तरजीवी के अलगाव और अनुभव को साझा करने की असंभवता का एक बहुत ही त्रासद चित्रण है, एक खामोश किताब जिसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।
तो अगर हम सोचें कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है या आज भी क्यों प्रासंगिक है, तो मेरे लिए ये चरम परिस्थितियों में मानवीय अनुकूलन की अविश्वसनीय और हाँ कभी कभी परेशान करने वाली क्षमता को उजागर करती है।
और मेरे लिए ये इस असहज सच को सामने लाता है कि इतिहास के कुछ अनुभव इतने गहरे घाव छोड़ जाते हैं कि वे व्यक्ति को उस सामान्य दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं जो उन्हें समझ नहीं पाती या समझना नहीं चाहती। ये हमें पूछने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में ऐसे अनुभवों को समझना संभव ही है।
के लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।